ओम शांति। चेहरे पर खुशी छा जाती है, आत्मा में शक्ति भर जाती है। जब हम आपकी वाणी सुनते हैं तो रूह हमें खुमारी छा जाती है। और आज हम सभी ब्राह्मण दिल की गहराई से आपके स्वागत सत्कार में तालियों का गुंजन करके वायुमंडल को परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन संसार में सभी बोलते हैं, शब्द चाहते भी हैं, परंतु केवल स्थूल रूप पर। आज बहुत सुंदर विषय जिसको हमको गहनता से समझना है, बड़ा सूक्ष्म अभ्यास होता है ये। तो आज परिवर्तन की गुह्य परिभाषा, सूक्ष्म अभ्यास कैसे करना है, इस विषय पर हम सभी लाभान्वित होंगे आदरणीय उषा दीदी जी से। दीदी जी का परिचय इस तरह से है, 1974 में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आया और आते से ही आध्यात्मिक ज्ञान को आपने अपना बना लिया और आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित हो गए। 1990 से अपना जीवन समस्त मानवता के प्रति ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। आप सीनियर राजयोगा टीचर, मैनेजमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। SML कोर्स और आध्यात्मिकता की और ये दो किताबें आपकी प्रकाशित हुई है, जो बहुत प्रसिद्ध हुई और ब्राह्मण परिवार ने साथ साथ संसार वालों ने भी इसको बहुत लाइक किया है। देश विदेश में अनेक प्रकार की सेवाएं तथा SML कोर्सेस द्वारा लाखों का जीवन उच्च बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा। अनेक टीवी चैनल द्वारा आपके लेक्चर्स, प्रवचन तथा कोर्सेस प्रसारित होते हैं। भारत के महान ग्रंथ रामायण, महाभारत तथा श्रीमद् भगवद गीता पर आपने आध्यात्मिक संशोधन किया और ईश्वरीय सत्य ज्ञान को शास्त्रों का आधार लेकर जनमानस तक पहुंचाया और बाबा के सेवा के विस्तार में 4 चांद लगा दिए। ऐसे दीदी जी से हम परिवर्तन इस विषय पर लाभान्वित होंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने एक गीत सुना। आए थे स्वयं को बदलने और स्वयं को बदलते ही जग को बदल देंगे। बहुत सुंदर ये अपना स्लोगन भी है, When we change, the world changes। और इसलिए परिवर्तन के इन दिनों में, क्योंकि अभी हम सभी ने मकर संक्रांति मनाई और मकर संक्रांति को प्राकृतिक रूप से यही कहा जाता कि दिन का परिवर्तन आरंभ हो जाता है। तिल जितना दिन बढ़ता जाता है, रातें छोटी होने लगती है, तो प्राकृतिक परिवर्तन हम सभी ने बहुत खुशी से इसका स्वागत किया। लेकिन क्या स्वयं की प्रकृति, हमारी भीतर की प्रकृति को, जिसको दूसरे शब्द में स्वभाव कहते हैं, क्या उसको भी हमने परिवर्तन करने की इतनी ही खुशी से आवाहन कहो या स्वागत करते हैं? परिवर्तन हर कोई चाहता है और शायद बाबा के हम बने हैं इसी आधार पर कि यहां आते ही हमारी जीवन शैली बदल गई, हमारी विचारधारा बदल गई, हमारे सारे नियम धारणाएं बदल गई और इसलिए जैसे जैसे ये परिवर्तन होता गया जीवन में हमें खुशी भी है। दूसरों के भी यही जीवन शैली परिवर्तन देख करके शायद हमने अपने जीवन में प्रेरणा ली कि ये वो स्थान है जहां मैं जिस रूप से स्वयं को बदलना चाहता हूं सकारात्मक तरीके से, उस सकारात्मक परिवर्तन को मैं अपने जीवन के अंदर सहजता से ला सकूंगा। और इसलिए हम बाबा के बने और बाबा के बनते ही आरंभ के दिनों में बड़ी खुशी थी हमें। एक ऐसा परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई, सुबह उठना हमारा हो गया, जो पहले बहुत देर से उठते थे सुबह सुबह उठ करके जैसे दिनचर्या आरंभ हो गई, बड़ी खुशी होने लगी। जैसे जैसे उस सात्विक जीवन शैली को अपनाने लगे बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो खुशी और आज की खुशी दोनों में अंतर है या दिनों दिन हमारी खुशी बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे, या कम होती जा रही है? बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है? मधुबन में आते तो बढ़ जाती है, फिर मधुबन से जाने के बाद वहां पर क्या होता है, थोड़ा झूले झूलने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। तो निरंतर हमारी खुशी बढ़ती रहे ये हमारा लक्ष्य है कि हमारे जीवन के अंदर खुशी कभी कम न हो। लेकिन अक्सर ये सुनने को मिलता है, क्या करें बहन जी, बहुत खुशी रहती थी पहले, पता नहीं अब क्या हो गया है। जैसे कि हमारी खुशी का ये हो गया, मधुबन आते हैं बहुत अच्छा लगता है, सबसे मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहां जाने के बाद फिर हमारा वही रूटीन आरंभ हो जाता है और वही रूटीन होने के कारण कहीं न कहीं उस खुशी को हम मिस कर रहे हैं जो हमारी पहले थी। तो ये परिवर्तन क्यों है? परिवर्तन ये होना चाहिए कि दिनों दिन बस उड़ते जाए, ये अनुभव होना चाहिए। तो उसका कारण है कि बाबा के बनने के बाद हम सभी ने सुपरफिशियल परिवर्तन जरूर किया, बाह्य स्वरूप का परिवर्तन अवश्य किया, लेकिन जो अब हम चाहते हैं कि हमारा भीतर से भी परिवर्तन हो, भीतर माना हमारे डीप रूटेड जो संस्कार है उस संस्कार पर हम परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है। और जब तक वो डीप रूटेड संस्कार पर परिवर्तन नहीं हो रहा है इसीलिए हमारी खुशी बीच बीच में गायब हो जाती है। तो ये संस्कार परिवर्तन करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाए जो सहजता से उसको हम परिवर्तन कर सके? तो पिछले दिनों की मुरली में बहुत अच्छी बाबा ने जो अव्यक्त मुरली में विधि बताई कि ये डीप रूटेड संस्कार का कनेक्शन कहाँ है। तो ये डीप रूटेड संस्कार का कनेक्शन कहीं न कहीं दो शब्दों के साथ ही जुड़ा हुआ है और वो है मैं और मेरा। ये मैं और मेरा, ये दो शब्द जो अभिमान के वश है उसी से ये डीप रूटेड संस्कार हमारे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब तक ये मैं और मेरा जीरो लेवल ना हो जाए, एकदम जिसको बाबा कहे हर वक्त देही अभिमानी स्थिति हमारी बने, उस स्थिति का अभ्यास हमारा बढ़ता जाए, जितना वो अभ्यास बढ़ता जाए। आज भी जैसे बाबा ने कहा कि जब हम किसी को भी देखते हैं, बहन जी ने बहुत सुंदर बात कही कि क्या हमारा वो अभ्यास है कि हम किसी को भी देखें तो हमें वो आत्मा ही दिखाई दे, हमारी दृष्टि वृत्ति कृति स्मृति मनसा वाचा कर्मणा, जब भी हम किसी के संपर्क संबंध में आते हैं तो हमें वो देह न दिखाई दे और आत्मा दिखाई दे, इतना हमारा अभ्यास अधिक हो जाए, वो मैंपन और मेरापन जीरो लेवल पर आ जाए, तब हमारे ये डीप रूटेड संस्कार को बदलना सहज होगा। क्योंकि जिसका कनेक्शन ही उस मैं और मेरे से है, जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक वो संस्कार बदलने वाले नहीं है। और हमारी चाहना है, हम चाहते हैं ये संस्कार हमारे बदले, परिवर्तन हो जाए, क्योंकि अगर इससे हम मुक्त हो गए, जो विशेष इस मास का अव्यक्त इशारा है कि स्वयं को इस बंधन से मुक्त करें और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें हम, तो जब तक ये बंधन से हम मुक्त नहीं होते हैं तब तक वो डीप रूटेड संस्कार पर हम कितना भी कार्य करें वो मिटने वाला नहीं। जैसे ही मैं आया कि वो संस्कार पूरा जागृत हो जाता है, क्योंकि संस्कार को खत्म नहीं किया जा सकता है, संस्कार को मर्ज किया जाता है, क्योंकि स्मृति विस्मृति का ही तो ये सारा खेल है। जितना वो संस्कार हमारे विस्मृत हो जाए, विस्मृत हो गए तो दैवी संस्कार प्रगट स्मृति में आ जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। लेकिन अगर ये जागृत स्थिति में रहेगा तब तक वो दैवी संस्कार हमारे जागृत नहीं होते। उसको मर्ज इस तरह से कर दिया जाए कि अगले 5000 साल के बाद ही मर्ज होगा, कलयुग आएगा तभी मर्ज होगा, ये तब तक के लिए मर्ज कर देना है। तो मर्ज ही मर्ज, इसीलिए बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैं भी जब परमधाम से आता हूं, मेरे वो संस्कार जब इमर्ज हो जाते हैं ज्ञान देने के, तो वो संस्कार इमर्ज होते ही मैं नीचे आ जाता हूं। कल की मुरली में बाबा ने, 18 तारीख की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बेआरामी हो जाती है, परमधाम खाली हो गया तो जैसे ही मेरा समय हुआ तो मुझे बेआरामी हो जाती है और बच्चों की पुकारें सुनने में आ जाती है, दुखी है बच्चे मेरे, तरस रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो मुझे बेआरामी आ जाती है और मैं नीचे आ जाता हूँ। तब तक मैं भी नहीं आता, ड्रामा प्लान अनुसार जैसे समय आया वो संस्कार जागृत हुए ज्ञान सागर के, और मैं नीचे आकर के ज्ञान सुनाना आरंभ कर देता हूँ। तो मर्ज इमर्ज का ही ये सारा खेल है, इसलिए उस मैं और मेरे को इतना मर्ज कर दे हम, जीरो लेवल पर ले आए एकदम, वो एकदम उससे भी नीचे चले जाए, जिसको शास्त्रों में कहा पाताल में चले जाए वो मैं और मेरा, वो अभिमान जो है पाताल में चला जाए अगले कल्प के लिए, तब जाकर के वो संस्कार हमारे समाप्त होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तब तक दैवी संस्कार जागृत नहीं हो सकते, और हम ये चाहते हैं कि हमारे दैवी संस्कार अब जागृत हो जाए, उस मैं और मेरेपन को भी समाप्त करने की विधि बाबा ने बता दी है हमको। कौन सी विधि बताई है? बच्चे अपने को निमित्त समझो, हर कार्य करते हुए करण करावन हार करा रहा है, ये इतना इमर्ज हो, कराने वाला बाबा है, मैं करनहार हूं। बाबा ने कई बार पिछली 2-3 अव्यक्त मुरलियों में भी, संडे की मुरलियों में भी कहा कि जैसे ही मैं उत्पन्न हो तो मैं आत्मा तुरंत, और मेरा उत्पन्न मेरा बाबा तुरंत, ये दो शब्द जैसे इकट्ठे इमर्ज हो, तब जाकर के इस संस्कार को हम संपूर्ण, लगातार बाबा की 2-3 मुरलियां ऐसी चली कि उस मैं और मेरे को समाप्त करो, तब परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होगी, नहीं तो तब तक नहीं हो सकती है। दूसरी बात जो बाबा ने पिछली अव्यक्त मुरलियों में बहुत सुंदर बात बताई, 2-3 मुरलियों में वो बात भी बहुत लगातार बाबा ने कहा कि कुछ भी होता है तो बच्चे तुरंत, मान लो कि किसी ने आपको कोई संदेश दिया कि बहन जी को संदेश पहुंचा देना, आप रोज जाते हो वहां क्लास में, तो बहन जी को संदेश दे देना, और मान लो कि हम भूल गए, फिर जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो याद आया कि इसने तो संदेश देने के लिए कहा था और हम तो भूल गए। अब ये भूल गए उसको छुपाएं कैसे हम, तो तुरंत मेरे मन में जब तक वो व्यक्ति पास में पहुंचे पूछने के लिए कि आपने मैसेज दिया, तब तक हम 10 कारण ढूंढ लेते हैं तुरंत, ये कहेंगे, ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे, है ना, तो 10 कारण इतना जल्दी इमर्ज हो जाते हैं अंदर से, और वो जैसे ही पहुंचा तो हमने आरंभ कर दिया, उसने पूछा भी नहीं, लेकिन हम तुरंत शुरू हो जाते हैं, और उसमें से शायद एक भी कारण सही नहीं होगा। सबसे वंडरफुल बात तो वो है कि एक भी कारण सही नहीं होगा, लेकिन जैसे बाबा ने कहा, कारण देना बहुत अच्छे से आता है मेरे बच्चों को, निवारण करना नहीं आता है। अब निवारण अगर नहीं होगा और कारण देने लगेंगे तो क्या होगा, और वो जो 10 कारण हमने दिए, वो सारे कारण अगर सही नहीं है, सत्य नहीं है, जो तीसरा व्यक्ति सुन रहा है वो कहे, वो जाने के बाद उसने मान लिया, चलो मान लिया, ठीक है, हो सकता है कि ये सारे कारण आपने जो बताए सही है। तीसरे ने पूछा, ये जो तुमने कारण बताए वो तो एक भी सही नहीं था, वास्तव में तो तुम भूल गया था, तो वही बात बता देते थे, सत्य बोल देते थे, तो क्या कहते हैं उस समय ब्राह्मण, अरे उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या फर्क पड़ता है, मैंने अगर ये 10 कारण जो बताए वो सही नहीं है, झूठ थे समझो, उसको क्या फर्क पड़ा। चलो उसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे तो पड़ा, क्योंकि एक झूठ का हिसाब जो बाबा ने बताया है संगम युग का, 1 का 100 गुना ये हिसाब है, प्राप्ति में भी 1 का 100 गुना है तो माइनस में भी 1 का 100 गुना है, वो बच्चे कई बार भूल जाते हैं। अब 10 कारण जो मैंने सही नहीं बताए, 1 का 100 गुना, तो कितना गुना मेरे ऊपर बोझ चढ़ा, वो 10 × 100 करो तो 1000, एक बार में 1000 गुना बोझ मेरे ऊपर चढ़ गया, तो उसको तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे तो फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। अब 1000 गुना जो बोझ मैंने उठा लिया इकट्ठा, ये मुझे खुश रहने देगा, मेरी खुशी को बढ़ाएगा या मेरी खुशी को कम करेगा, क्या होगा, कम करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, एक बार में ये 1000 हुआ, लेकिन ये संस्कार जो मेरा बन गया, सारे दिन में कितना गुना हम बढ़ा रहे हैं, तो दिन के अंत में कितना बोझ लेकर के चल रहे हैं, और फिर हम जाकर बाबा के कमरे में कहेंगे कि बाबा ये सारा बोझ हम उतार कर आपको दे देते हैं। बाबा क्या कहेगा? गलती से जो किया हुआ बोझ है चलो मैं उसको स्वीकार कर, लेकिन जो जानबूझ करके किया गया है उसको क्या कहेंगे? उस संस्कार को बदलना नहीं है। और हर रोज इस प्रकार के अगर कारण देना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा? और फिर रोज क्या, रोज रोज बाबा को बोझ देने से बाबा ले लेगा? इसलिए कहा परिवर्तन, ये टॉपिक जो इसीलिए रखा परिवर्तन, कि कब ये परिवर्तन हम करेंगे। जो बाबा बार बार कहते बच्चे कारण नहीं सोचो निवारण सोचो, उस समय अगर सच बोल करके हम निवारण कर दे कि चलो मैं अभी जाता हूं, मेरे से गलती हुई, मैं स्वीकार करता हूं, मैं भूल गया, मैं अभी चला जाता हूं, सारा काम छोड़ करके निवारण अगर 10 सोच लिया जाए कि अभी फोन कर लेते हैं, बहन जी भी फ्री होगी, या दूसरी बहन को हम मैसेज दे देंगे, या जहां जो कार्य उचित है, तो निवारण 10 नहीं सोच सकते हैं। अगर 10 कारण बुद्धि में आ सकता है 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 10 निवारण भी तो आ सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा बचपन से ही अभ्यास हो गया कारण सोचने का, तो ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी हम हिसाब भूल जाते हैं, 1 का 10 गुना, 1 का 100 गुना, और 10 कारण हम तैयार कर लेते हैं। अब वो संस्कार जब तक बदलेंगे नहीं, तब तक दैवी संस्कार इमर्ज कैसे होंगे? जो झूठ के कारण देने के जो असत्य कारण हमने बता दिए, अब ये झूठ जो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है उसको हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तो जो दैवी संस्कार सत्यता के हैं वो इमर्ज कैसे होंगे? क्योंकि दैवी संस्कार में सबसे पहला है ही सत्यता, सतो प्रधानता का आधार ही है सत्यता। वो सत्यता ही अगर नहीं रही तो सतो प्रधानता अगर आए ही नहीं, वो सतो प्रधानता नहीं है, इसीलिए वो परिवर्तन अनुभव नहीं हो रहा है। वो खुशी जो बढ़नी चाहिए वो खुशी बढ़ती नहीं है, और ही हमारी खुशी दिनों दिन ये बोझ के तले दब दब करके खुशी गायब हो रही है। इसीलिए पूछा, खुशी हमारी दिनों दिन बढ़ती है या कम हो रही है? कम हो रही है, और उसका कारण ये है। इसीलिए बाबा कहते 10 निवारण सोच लो, और 10 निवारण सोच करके अगर उस व्यक्ति के सामने हमने निवारण रख दिए कि मेरी ये गलती हो गई, सत्य बता दिया, मैं भूल गया, सच पूछो तो मैं भूल गया, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है आप रहने दो, मैं ही चला जाता हूं, तो अपना समय भी बच गया, उसका समय सफल हो गया, सेंटर पर चला गया, तो वहां के वाइब्रेशन तो प्राप्त कर लिए उस दिन के, उसने जो बाबा के घर की शक्तिशाली वाइब्रेशन है, तो प्राप्ति दोनों को हो गई, न मेरे ऊपर बोझ इकट्ठा हुआ, और उसको भी बाबा के घर जाने का अगर मौका मिल गया, उस वाइब्रेशन को प्राप्त करने का मौका मिला, और अच्छा रहा। तो बोझ को बढ़ाने के बजाय बोझ का खत्म कैसे हो उसका निवारण सोचना, ये परिवर्तन की प्रक्रिया को हमें तीव्र करना है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया हमारे अंदर आनी चाहिए समय अनुसार। बाबा ने जैसे पिछली मुरली में, अव्यक्त मुरली में बहुत सुंदर बात ये कही, बच्चे स्वयं और समय दोनों को देखो। और ये तो हम सभी जानते हैं कि समय की रफ्तार तीव्र हो गई है, लेकिन समय की रफ्तार तीव्र होने के साथ साथ क्या स्वयं के पुरुषार्थ की रफ्तार भी इतनी ही तीव्र हो रही है, या जैसे थे वैसे ही है? ये जरूर है कि बाबा ने विधि भी बताई है कि ये परिवर्तन करने के लिए जो सबसे पावरफुल चाबी है, वो चाबी भी दी है हमें। कौन सी चाबी है? दृढ़ता की। दृढ़ता की चाबी लगाओ और दृढ़ संकल्प कर दो, ये आपको सफलता दिलाएगी। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो ये चाबी भी बाबा ने बता दी कि परिवर्तन करने के लिए दृढ़ संकल्प करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। और इस सफलता की चाबी का प्रयोग करो। लेकिन जब तक मधुबन में है, 18 जनवरी है, बाबा के कमरे में जाकर बहुत सुंदर दृढ़ संकल्प हम सभी करते हैं। यहाँ तो इतनी खुशी होती है, मैंने ये दृढ़ संकल्प किया, अब सचमुच मेरे अंदर परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन भाई क्रोध का अंश है या गुस्सा है, मैंने दृढ़ संकल्प कर दिया, यहाँ बाबा को दान दे दिया, छोड़ दिया, बड़ा खुशी अनुभव होने लगा है ना। लेकिन यहाँ से स्टेशन गए और आपके ट्रेन में सीट पर कोई बैठ गया और नहीं उठ रहा है तो क्या होगा? क्या होगा? वो क्रोध जो दान किया हुआ था वो वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे? क्या होगा? वो दृढ़ संकल्प उसी समय ऐसे हवा फुस हो जाता है, जो बाबा कहते सोडा वाटर हो जाता है एकदम, और हम भूल जाते हैं कि हम बाबा के घर में, बाबा के कमरे में अमृत वेले वरदानी दिन पर हमने ये दृढ़ संकल्प किया है। ये सब कुछ भूल जाता है, ज्ञान ही उड़ जाता है। फिर बाद में याद आता, अरे मैंने तो गुस्सा कर लिया, बाबा को बोला था। फिर दूसरे दिन अमृत वेले बैठ के, बाबा सॉरी कल तो मैंने गुस्सा कर लिया, अब आज नहीं करूंगा। फिर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, विस्मृति हो जाती है, फिर गुस्सा आ जाता है। भावार्थ ये कि दृढ़ता हमारी पक्की क्यों नहीं रहती है? क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं कि ये दृढ़ता पक्की तब रहेगी जब उस संस्कार को रिप्लेस किया जाए कोई दूसरे संस्कार से। अगर वो खाली जगह है तो वो वापस आ ही जाना है, ये स्वाभाविक है। इसलिए वो खाली जगह को भरना बहुत जरूरी है। और कैसे भरेंगे? कोई न कोई सद्गुण से भरने की आवश्यकता, सद्गुण से उसको भरना पड़ेगा। वो संस्कार को इतना पावरफुल अंदर से बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो कमजोरी के संस्कार है उसको सहजता से हम छोड़ सकेंगे। तीसरी बात जो बाबा ने बहुत सुंदर परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए हमें बताई है, तीन चीजें छोड़ने की और तीन चीजें धारण करने की। बाबा की अव्यक्त मुरली याद आई होंगी कि जिसमें बाबा ने कहा तीन चीजें छोड़ना है और तीन चीजें धारण करनी है। कौन सी तीन चीजें? तीन पर छोड़ना है, पर चिंतन, पर दर्शन। कितना पक्का याद है हमने कि पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत के प्रभाव से हमें अपने आप को मुक्त रखना है। और उसके बदले में तीन चीजें जो धारण करनी है वो है स्वचिंतन, शुभ चिंतन। स्वचिंतन खाली नहीं, लेकिन स्व के साथ दूसरों के प्रति शुभ चिंतन। तो स्वचिंतन, शुभ चिंतन। दूसरा है स्वदर्शन, जो आज बाबा ने कहानी सुनाई मुरली के अंदर कि मैं तुम बच्चों को कहानी सुनाता हूं। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए बाबा कितनी बार हमें प्रेरणा देता है, बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाओ। और यहां तक बाबा ने 2 साल पहले की अव्यक्त मुरली सीजन में चलाई थी, तो उसमें कहा था बच्चे सारे दिन में कितनी बार स्वदर्शन चक्र घुमाओ? 8 बार। 8 बार स्वदर्शन चक्र घुमाओ। और ये स्वदर्शन चक्र घूमने से क्या होगा? तो जैसे शास्त्र में दिखाया कि श्री कृष्ण ने जब स्वदर्शन चक्र घुमाया तो असुरों का गला कटा। असुर अर्थात हमारी कमजोरी, हमारी कमजोरी का गला भी कटेगा, हमारी कमजोरी का गला कटेगा। इसलिए बाबा ने कहा था कि बच्चे 8 बार ये स्वदर्शन चक्र घुमाओ तो जो कमजोरी रूपी असुर है उस कमजोरी रूपी असुरों का गला काटने का यही शस्त्र है। तो स्वचिंतन, शुभ चिंतन, स्वदर्शन और तीसरा है श्रीमत के प्रभाव में हम रहे, श्रीमत के प्रभाव में, तब हम पर मत के प्रभाव से या मन मत के प्रभाव से मुक्त हो सकेंगे। जब हमारे ऊपर श्रीमत का प्रभाव इतना गहराई से पड़े तब जाकर के ये परिवर्तन बहुत सुंदर और सहज रीति से हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। इसलिए कहा अब तक का जो परिवर्तन हमने किया एक सुपरफिशियल लेवल का किया है, जो गहराई वाला हम चाहते हैं, चाहना होते हुए बाबा की भी चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा ऐसा सैंपल बन जाए। और बाबा ने यहाँ तक कहा है जो ऐसा परिवर्तन करेगा और 108 से ज्यादा हुए तो बाबा क्या करेगा, लड़ियां लगा देगा, है ना। कई सोचते बाबा बच्चों को खुश करता है, भगवान कभी किसी को खुश नहीं करता, इतना याद रखना। भगवान जो बोलते हैं उसके हर बोल में सत्यता समाई हुई है, क्योंकि भगवान है ही सत्य। किसी को खुश करने के लिए हम झूठ बोल देते हैं तो क्या भगवान कभी झूठ बोल सकता है? भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकता है। भगवान जो बात कहते हैं उसकी हर बात में 100% सच्चाई है। उसके हर महावाक्य जो इतने अमूल्य है, उस हर अमूल्य महावाक्य के अंदर इतनी ताकत है सत्यता की, उसमें झूठ नहीं हो सकता है। इसलिए आज से कभी भी ये ब्रह्म जो पाला हुआ है, बाबा भी खुश कर देता है बच्चों को। बाबा कभी खुश, बाबा को खुश करने से क्या मिलेगा? मनुष्य एक दूसरे को खुश करने के लिए झूठ भी बोल देते हैं। कुछ प्राप्ति होती है स्थूल में, इसीलिए भगवान को क्या प्राप्ति करना है जो वो हमें खुश करने के लिए झूठ बोल दे? अरे भगवान को कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, वो सत्य है। तो जो सत्य है उसके हर महावाक्य के अंदर भी 100% सत्यता समाई हुई है। जो बच्चे, इसीलिए कई बार बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं, बहुत कम बच्चे मुझे पहचानते हैं। अगर ये पहचान हमारे अंदर आ जाए कि बाबा के हर महावाक्य के अंदर भी इतनी ताकत है सत्यता की समाई हुई, और उस शब्द को हम जब धारण करते हैं तो वो ताकत को हम स्वयं में भी अनुभव कर सकते हैं, उसी के आधार से इतना ऊंचा उठ सकते हैं। इसलिए श्रीमत जो कही, श्रीमत मन इतनी ताकत है उसके अंदर के एक एक को श्रेष्ठ बना सकता है। करोड़ों व्यक्ति जो श्रीमत पर चलता है उन करोड़ों को श्रेष्ठ बनाने की ताकत हो उसको कहा जाता है श्री श्री की श्रीमत है। ये श्री श्री की श्रीमत। दुनिया के मनुष्य भले अपने ऊपर श्री श्री लगा देते हो लेकिन उनके महावाक्य में एक दो को भी श्रेष्ठ बनाने की ताकत नहीं होती है। यहाँ हजारों क्या लाखों भाई बहनों को श्रेष्ठ बनाने की ताकत है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है श्रीमत का, ये श्रीमत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए कभी ये मत समझना कि भगवान बच्चों को खुश करने के लिए ऐसे ही कह देते मैं लड़ियां लगा दूंगा। बाबा खुश नहीं करता है, बाबा के पास ताकत है लड़ियां लगाने की, ये भी ताकत है। इसीलिए उस श्रीमत की वैल्यू को भी समझना चाहिए कि भगवान ने कहा है माना वो सत्य है। और इसका अनुभव मैंने अपने जीवन में कई बार किया है कि बाबा के एक एक वचन जो बाबा ने बोला है, जैसा बोला है, उस रूप से जब हम उच्चारण भी करते हैं तो उसमें भी इतनी ताकत आ जाती है जो सामने वालों का भाग्य बदलने की ताकत रखता है। ये अनुभव किया है मैंने। तो जो दूसरे का भाग्य बदलने की ताकत रख सकता है तो हमारा स्वयं का भाग्य बदलने की ताकत कितनी रखेगा। अगर एक श्रीमत को जो है जैसा है वैसे उसको धारण किया तो। इसलिए बाबा ने कहा परिवर्तन करने के लिए ये तीन बातों को छोड़ो और तीन बातों को रिप्लेस कर दो, ताकि वो तीन चीजें वापस आ न सके। ये पावरफुल चीज से उसको रिप्लेस कर दो, स्वचिंतन शुभ चिंतन, स्वदर्शन चक्र को घुमाना शुरू करो, और श्रेष्ठ मत का, श्री मत का इतना प्रभाव हमारी बुद्धि के ऊपर छा जाए कि कोई मनुष्य की पर मत और पर दर्शन या मन मत का प्रभाव आ न सके। इतनी ताकत है श्री मत की। इसको समझते हुए रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। तो परिवर्तन करने के लिए ये तीन चीजों को हमें विदाई देनी होगी। लेकिन आजकल ब्राह्मण संसार में क्या हो गया है, जैसे ही कोई समाचार आता है एक तो व्हाट्सएप के द्वारा इतना वायरल कर देते हैं, और दूसरा वायरल तो होता है लेकिन वो सुनते हुए वो देखते हुए क्या होता है, फिर एक दूसरे को पूछना चालू करते हैं, ऐसा हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये होना था क्या। वो पर चिंतन तुरंत आरंभ हो जाता, अरे क्या करना है फालतू के व्यर्थ की बातों को लेकर के चलना, उसमें हमारी कौन सी उन्नति हो रही है, कौन सी प्राप्ति हो रही है। और रोज की ये तो माया का अंतिम दाव, माया चलेगी तो माया जब अंतिम दाव चलेगी तो कोई ना कोई ब्राह्मणों को तो गिराती रहेगी। अब वो गिराते हुए जो समाचार मिला उसको हम एक दूसरे के साथ वर्णन करने से क्या दृढ़ संकल्प हमारा बढ़ेगा या कम होगा? जितना व्यर्थ की बातों में हम गए उससे हमारा दृढ़ संकल्प जो किया हुआ था वो पावरफुल होगा या उसकी ताकत कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए ये तो बाबा कहते हैं अभी माया का जाने का समय आ गया है, तो वो अंतिम दाव चलेगी, जितने को गिरा सकी वो ट्राई तो करेगी। तो हमें गिरना चाहिए या हमें चढ़ना है, कहीं हम लपेटे में ना आ जाए माया के। इसलिए इन व्यर्थ के समाचारों से अपने आप को मुक्त करना है। जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए ये व्यर्थ के समाचारों से स्वयं को मुक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण संसार में सबसे चटपटी बातें कौन सी होती है ना, कौन सी चटपटी बातें होती है, मिर्च मसाला वाली मस्त एकदम जो बुद्धि को स्वाद लगे, ऐसी कौन सी चीजें होती है। अरे कितना सत्य है कितना झूठ है उसमें समाया हुआ, उसकी परख शक्ति अगर नहीं है तो क्या होगा, वो गिरेगा या चढ़ेगा, और गिरने से क्या खुशी बढ़ेगी या कम होगी। तो ब्राह्मण जीवन इतना अमूल्य, हमने पुरुषार्थ करते 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 यहाँ तक चढ़े, और फिर ऐसे चटपटे खबरें आई और फिर नीचे गिर गए तो फायदा होगा या नुकसान होगा बताओ। और वहां भी अगर हिसाब लगा दो एक का 100 गुना तो क्या होगा, ये चटपटी बातें जितनी मसालेदार जायकेदार होती है बुद्धि के भोजन के रूप में वो तो गिराती जाएगी। और एक का 100 गुना हिसाब सत्यता मालूम नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसीलिए अगर उन बातों में हमने इंटरेस्ट लेना चालू किया, खोदना चालू किया, उसको इसको पूछा उसको पूछा, फिर उसको फोन लगा, 10 जगह से हमने जो संसार समाचार इकट्ठा किया, प्राप्ति क्या हुई
तो परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र होगी या कम हो जाएगी? फिर उसको मेकअप करने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये तो जरा सोचो। तो इसीलिए ब्राह्मण संसार के अंदर भी अभी माया का अंतिम दाव है। अंतिम दाव में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। न सोचना है, शुभ चिंतन रखो, बाबा हर एक की बुद्धि को सही सलामत रखे। हाँ, अंतिम समय में यही हमारा शुभ भावना, शुभ कामना का वाइब्रेशन हम फैलाएं, अपने संगठन को मजबूत रखें, अपने आप को मजबूत रखें। बाकी इन बातों में जाने से तो जहां कहा जाता है ना, दुनिया में भी ध्यान हटा दुर्घटना घटी, स्वयं के साथ भी दुर्घटना हो जाएगी। इसीलिए ध्यान को भटकाना नहीं है, अभी ध्यान को जितना हो सके एकाग्र चित रखना है। बाबा ने कल की 18 की मुरली में बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे आपको ऑर्डर हो कि आप बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाओ, तो क्या सचमुच एक सेकंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो सकते हैं? या इधर उधर संकल्प चलते रहेंगे, क्योंकि जितना समाचार सुनेंगे इतना उसका मंथन होगा, तो वहां से बुद्धि योग हटाना सहज होगा या मुश्किल होगा? और उसी समय अगर अंतिम घड़ी आ गई तो बीज रूप अवस्था में स्थित होना स्वाभाविक होगा या नहीं होगा? और जब बीज रूप स्थिति में स्थित ही नहीं हो पाए और अंतिम घड़ी आ गई तो क्या पद की प्राप्ति होगी? अंत मते सो गति, कौन सा पद मिलेगा? इसलिए कहा ये संसार समाचार की जो बातें हैं, विशेषकर ब्राह्मण संसार समाचार की जो बातें, बाहर के संसार समाचार को तो सुनना पढ़ना हमने छोड़ भी दिया होगा, या मुख्य मुख्य बातें अगर जान भी लिया कि क्या हो रहा है वो समझ लिया, तो उसके प्रति तो हमारा इतना संकल्प नहीं चलता है। लेकिन संकल्प कहाँ चलता है? ब्राह्मण संसार में जो बातें होती है वहां क्या होता है ना? इसीलिए कहा मिर्च मसाला डाल करके उसको चटपटा बना करके जायकेदार बना करके जब परोसा जाता है तो हमारी बुद्धि एकाग्र बीज रूप स्थिति में एकाग्र होगी? नहीं हो सकती है। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? हाँ, फायदा हुआ नुकसान हुआ? परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होगी या ढीली पड़ जाएगी? ढीली पड़ जाएगी, और इसी कारण से खुशी नहीं होगी, खुशी तो गायब हो जाएगी। तो ये पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव से मुक्त होने के लिए जो बाबा ने ये तीन चीजें रिप्लेसमेंट के लिए दिया है वो हमें करना है। परीक्षा आएगी, 10 लोग सुनाने के लिए आपको तैयार रहेंगे, आपके पास व्हाट्सएप पर 10 जगह से ये मैसेज आएगा, लेकिन उस मैसेज को देखने के लिए भी नहीं खोलना है, उसको तुरंत डिलीट करो। मेरे मन बुद्धि को मैं पोल्यूट क्यों करूं, दूषित क्यों करूं? अगर मन बुद्धि हमारी दूषित हो गई तो परिवर्तन की प्रक्रिया में सफल नहीं होंगे, और वहीं हमको बहुत बड़ा मार माया की थप्पड़ का ऐसा लगेगा जो एकदम कहीं ना कहीं हमें भी अपनी उस अवस्था तक बहुत मेहनत से जो हम पहुंचे हैं वहां से गिराने में एक मिनट लगती है। इसके लिए ये तीन चीजों से इतना मजबूती से उसको रिप्लेस कर लो कि कोई भी चीज मेरे अवस्था को हिला न सके। अभी अवस्था ऐसी हमें मजबूत बनानी है। भाग्यशाली हो जो 18 जनवरी पर आप सभी बाबा के घर पहुंचे हैं, ये वरदानी मास, और उसमें भी कल का विशेष वरदानी दिन के अमृत वेले से बाबा इतने वरदान लुटा रहे हैं और इतने वरदान लुटाते हैं, उस वरदानों से अपनी झोली भर लेना है और अपने पुरुषार्थ को ऐसा श्रेष्ठ तीव्र गति देना है जो समय से पहले हम अपने आप को तैयार कर सके, तभी तो खुशी का पारा चढ़ेगा। इसलिए कहा कि हमें अपने आप में बहुत पावरफुल अंदर से बनना है। यहाँ आए हैं तो यही दृढ़ संकल्प कल अमृत वेला कर लेना है, और बाबा वरदान दे देता है तो उस वरदान से अपने आप को सशक्त कर लेना है उस संकल्प को। इसलिए बहुत क्लियर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं कई बार कि बाबा भी अपने पॉकेट के अंदर नारायण का चित्र रखते हुए उसको देखता रहता था, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। बाबा ने ब्राह्मण संसार के तरफ नहीं देखा, ब्राह्मण संसार के तरफ बाबा की हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना के ही वाइब्रेशन निकलते रहे कि मेरे हर बच्चे मेरे समान बन जाए, ये शुभ भावना के वाइब्रेशन बाबा के रहे। बाबा ने कभी ये संसार समाचार में इंटरेस्ट नहीं लिया, तो मुझे बाप समान बनना है तो क्या करना है ना? तो झूठी दुनिया के अंदर झूठ ज्यादा परोसा जाता है, झूठ बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए उस झूठ में मुझे इंटरेस्ट लेना नहीं है। मुझे सत्य बाप के महावाक्य में इंटरेस्ट हो, जितना सत्य बाप के महावाक्य में इंटरेस्ट होगा उतना ही बाबा के समान बनना मेरे लिए सहज होगा। अभी कल एक बहुत सुंदर बात मैं पढ़ रही थी कि दुनिया के अंदर एक बहुत सुंदर रिसर्च किया गया, विशेष एक कोमा के पेशेंट के ऊपर, कि जब उसके सामने उन लोगों ने प्रार्थना की तो प्रार्थना चार तरीके से रिसर्च किया कि प्रार्थना करने से तो उसके ऊपर ब्रेन पर इलेक्ट्रो रॉड्स लगाए गए, तो कहा जब हम प्रार्थना कर रहे थे उनके बुद्धि के अंदर जो इलेक्ट्रो रॉड्स लगाए थे वहां स्पार्क हो रहा था और इस तरह से धीरे धीरे लगातार जब करते गए। दूसरा उन्होंने प्रयोग किया मंत्रों का। तीसरा प्रयोग किया कि कोई दूसरे व्यक्ति जो है उसके ऊपर रेकी जैसे कर रहा है उस तरह से, और चौथा मेडिटेशन का प्रभाव क्या होता है। ये चारों में भी उनको उन्होंने रिसर्च जो किया उसमें देखने को मिला कि मेडिटेशन का प्रभाव सबसे ज्यादा काम कर रहा है। ये रिसर्च है, दुनिया के लोग ये रिसर्च कर रहे हैं। प्रेयर का कम था, उसके बाद मंत्रों का था, रेकी का भी बहुत कम था, दूसरे जब करते हैं वो भी कम था, मंत्रों का प्रभाव भी था, और लास्ट में जो सबसे पावरफुल था मेडिटेशन का प्रभाव, कि जब हम मेडिटेशन में किसी को सकाश देते हैं तो बाबा कहते हैं वो आत्मा एकदम शांति महसूस करती है, और उसके अंदर जैसे वो ब्रेन जो डेड हो गया है वो हिस्सा जैसे जागृत होने लगता है। ये रिसर्च किया, और ये रिसर्च से बहुत सुंदर। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं, फिर उसके सामने हाँ सत्संग किया गया, माना शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया, बाइबल को पढ़ना चालू किया, तो जब वो पढ़ते थे तभी भी उनके अंदर बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक वेव्स जैसे प्रोड्यूस होने लगे। तब मैंने समझा कि बाबा हम बच्चों को क्यों कहते हैं कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करना है। बाबा जैसा बड़ा साइंटिस्ट कोई है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। वो लोग तो आज रिसर्च कर रहे हैं कि भाई शास्त्र पढ़े या जो बाइबल पढ़ा या ये कोई सत्संग किया या कोई मोटिवेशनल स्पीच उसको सुनाई गई तो उससे उनके अंदर जो स्पार्क होने लगा, वो बहुत इलेक्ट्रिक वेव्स जो पैदा हो गए वो बहुत काम करने लगा। तो मैंने यही समझा कि सुबह सुबह का जो मुरली सुनने का महत्व है वो इसीलिए कि सुबह में वो हमारे ब्रेन को इतना एक्टिव कर देता है, सारे दिन के लिए वो हमारा बेस बन जाता है। तो एक तो अमृत वेले मेडिटेशन और दूसरा ये सुबह की मुरली, ये दो चीजें हमारे ब्रेन वेव्स को किस प्रकार से पॉजिटिव बनाता है, एक्टिवेट करता है। आज अगर कोई रिसर्च करे तो तो पता चले कि दादी जानकी पर जब इसीलिए रिसर्च किया तो कहा द वुमन विद द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। तो ये प्रभाव श्रीमत का या मुरली का प्रभाव हमारे दिमाग के ऊपर होगा तो हम सभी भी मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड वाले बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? एक दादी जानकी की बात नहीं है, लेकिन हम सब बन सकते हैं, क्योंकि दादी जानकी ने अपने मन बुद्धि के ऊपर बाबा के महावाक्यों के सिवाय कोई मनुष्य के महावाक्य कोई मनुष्य के वाक्यों का प्रभाव पड़ने नहीं दिया। इसलिए ऐसी स्टेज हो गई थी दादी की। तो हम सबकी नहीं बन सकती है क्या? लेकिन हम सभी सोचते हैं, मुरली तो हम सुबह में सुनते हैं, आजकल तो हमारे उसके ऊपर आ जाता है, फोन पर आ जाता है, यूट्यूब में आ जाता है, घर में बैठ के सुन, लेकिन जो बाकायदे ऑफिशियल मुरली सुनते हैं क्लास में बैठ करके, उसका जो प्रभाव पड़ेगा संगठन की शक्ति का, वो ज्यादा काम करता है अकेले मुरली सुनने से। आप संगठन में बैठ करके जब मुरली सुनो तो वो वाइब्रेशन इतना पावरफुल हो जाता है जो हमारा मन बुद्धि को बहुत तीव्र एक्टिवेट करता है। आप पर्सनल अगर सुन रहे हैं तो कभी कभी ध्यान इधर उधर चला जाता है, बाहर की चीजों में भी चला जाता है, तो वो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर संगठन में मुरली क्लास में बाकायदे बाबा की जो श्रीमत है उसको पालन करते, बाबा ने क्यों कहा, ये श्रीमत क्यों दिया कि बच्चे मुरली यहाँ बैठ के सुनो, उससे परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तीव्र हो जाएगी, बहुत तीव्र हो जाएगी। संगठन का जो बल मिलता है वो बहुत पावरफुल ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और उस वाइब्रेशन में जब हम मुरली सुनते हैं तो उसका जो लाभ मिलता है वो बहुत बहुत कई गुना अधिक लाभ मिलता है, और परिवर्तन की प्रक्रिया को हम बहुत तीव्र सहज सरल कर सकते हैं। और जो परिवर्तन चाहते हैं उस परिवर्तन को, एक कोमा में गया हुआ व्यक्ति को अगर जागृत कर सकता है मुरली, ना सिर्फ मुरली लेकिन हम मेडिटेशन, तो क्या प्रैक्टिकल जागृत अवस्था में जब सुन रहे होते तो हमारी कितनी एक्टिव स्थिति हो जाती है, ये समझने की बात है। तो इसीलिए ये दृढ़ संकल्प अवश्य करें कि आज के बाद हम क्लासरूम में संगठन में बैठ करके मुरली सुनेंगे। करेंगे? हाथ तो खड़ा करो जो करेंगे। वाह बाबा वाह, बाबा देख रहा है सबके हाथ ऊपर हुए, तो इसीलिए संगठन में ही क्लास में ही मुरली सुनने से आप जो स्थिति बनाना चाहते हैं, जो अवस्था बनाना चाहते हैं, उसको सहजता से बना सकेंगे। ऐसी शुभ भावना शुभकामना आप सबके प्रति रखते हुए बहुत बहुत 18 जनवरी की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ओम शांति।
वाणी में माइक आगे, वाणी में जिनके सरस्वती माँ हैं, जीवन में जिनके गीता का ज्ञान है, रामायण और महाभारत का सत्य सार समझाया है, उषा काल का उगता हुआ सूरज जिनकी वाणी सुनने का इंतजार करता है, संध्या काल का ढलता हुआ सूरज ढेर सारी दुआएं देकर जाता है, और डायमंड हॉल के हम सभी फरिश्ते ब्राह्मण आपका दर्शन करके, आपसे सत्यता का महत्व समझकर लाभान्वित होकर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा दीदी जी।
मीठे मीठे बच्चे कह करके कटु को भी मधुर किया। बेसुरी वीणा के तारों ने गजब का था सुर दिया। मौन स्वर में नैन कहते, मौन स्वर में नैन कहते आपका आभार। भूलेंगे कैसे भला भूले भले संसार, आपकी शिक्षाएं बाबा।
Stalin।